नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार तथा आजीविका के अवसरों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। बिहार सरकार ने कहा है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में मददगार साबित होगी। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले इस योजना को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सशक्त महिला समृद्ध बिहार के संकल्प को पूरा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के शुभारंभ के पहले दिन 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की पहली किस्त भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के नेतृत्व में महिलाओं के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों की कड़ी में यह योजना आज शुरू की जा रही है। इसके तहत 7500 करोड़ रुपए DBT के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार प्रदान करेंगी। वर्ष 2024 के लिए ये पुरस्कार नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित समारोह में दिए जाएंगे। ये पुरस्कार भू विज्ञान के क्षेत्र में देश के प्राचीनतम और सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कारों में शामिल हैं। भारतीय वायुसेना आज चंडीगढ़ में MiG-21 विमान को विदाई दे रही है। समारोह 60 वर्ष से भी अधिक समय तक देश की सेवा करने वाले इस विमान के एक युग के अंत का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह के मुख्य अतिथि हैं। उनके साथ प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और सेवानिवृत्त वायुसेना प्रमुख VR चौधरी भी मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि MiG-21 भारतीय वायुसेना का गौरवशाली प्रतीक और निडर योद्धा है, जिसने अपनी वीरता पीढ़ियों तक कायम रखी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद से लड़ने वाले वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सेवा कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रस्तुति के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद विकास और शांति के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि आतंकियों के बीच व्यापक नेटवर्किंग को देखते हुए भी जो इससे निपटने के लिए संघर्ष करते हैं वो समग्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की व्यापक सेवा करते हैं। उन्होंने कहा कि विश्व को आतंकी गतिविधियों को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करना चाहिए। विदेश मंत्री ने प्रतिबंध लागू करने में विश्व के दोहरे मानदंडों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों से आपूर्ति और लॉजिस्टिक्स में बाधा होती है, लागत बढ़ती है और राष्ट्रों पर दबाव बनता है। निर्वाचन आयोग ने पोस्टल बैलेट की गणना संबंधी नियमों को संशोधित किया है। EVM और VVPAT की गणना के अंतिम राउंड से पहले सभी डाक मतपत्रों की गणना अनिवार्य बना दी गई है। आयोग के बयान में कहा गया है कि चुनाव सुधारों से संबंधित 30वीं पहल का उद्देश्य मतगणना में तेजी, पारदर्शिता और एक रूपता के लिए डाक मतपत्रों की गिनती को मुख्यधारा से जोड़ना है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि दिव्यांगजनों और 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को घर से वोट डालने की सुविधा के कारण हाल के चुनावों में डाक मतपत्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आयोग ने चुनाव अधिकारियों को उन निर्वाचन क्षेत्रों में अतिरिक्त मतगणना टेबल और कर्मचारी उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है जहां डाक मतपत्रों की संख्या अधिक होती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि मतगणना सुचारू रूप से और बिना किसी देरी के हो। गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक के NGO का विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार सोनम वांगचुक ने 2021-22 में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करते हुए संस्था के FCRA खाते में 3.5 लाख रुपए जमा किए थे। NGO को प्रवासन, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और संप्रभुता जैसे मुद्दों पर शैक्षिक कार्यक्रम के लिए एक स्वीडिश दानदाता से 4,93,205 रुपए प्राप्त हुए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।